भव बीजांकुर जनना भव बीजांकुर जनना रागाद्याक्षयमुपागतायस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधीर गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी के, आचार्य कुंद कुंद स्वामी के, आचार्य गुरु और विद्यासागर मुनि महाराज के, एक बहुत पुरानी घटना मुझे ध्यान आई। वैसे पिछले कई दिनों से हम अपने जीवन के विकास के लिए ऐसी कई घटनाओं को सुन चुके हैं। वे हमारे जीवन को कोई ना कोई संदेश देकर के जाती हैं। बस इतनी ही कोशिश हमारी होनी चाहिए कि हम उनसे संदेश ले लें। वैसे तो किसी के जीवन की घटना क्या, अपने ही जीवन की घटनाएं इतनी होती हैं व्यक्ति के जीवन में कि वो अपने जीवन में घटने वाली ही घटना से कोई संदेश ले ले और अपने जीवन को एक सही दिशा दे दे तो संभव है। लेकिन फिर भी दूसरे का जीवन भी हमें कई बार सही रास्ते पर लाने के लिए सहयोग देता है। एक गांव का जमींदार था, वो शाम को अपने घर वापस लौटता था। रास्ते में एक घर के सामने से जब वो गुजरा तो उसे एक बूढ़ा व्यक्ति उस घर के बाहर बैठा दिखाई पड़ा और इतना ही नहीं उसे सुनाई पड़ा कि एक छोटी सी बिटिया आकर के उस बूढ़े व्यक्ति से कह रही है कि बाबा शाम हो गई, अंधेरा घिरने को है, आपने अभी तक दिया नहीं जलाया। जमींदार उस रोज पता नहीं किस मानसिकता से अपने घर वापस लौटता था, लेकिन ये बात उसके मन को बहुत अंदर तक हिला गई कि बाबा शाम होने को है, अंधेरा घिरने को है, अभी तक आपने एक दीप नहीं जलाया। घर पहुंचकर उसने घर के सब लोगों से कहा कि मैं अब तुम सब की जिम्मेदारी से दूर हटकर अपने जीवन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी को पूरा करने जा रहा हूं। लोगों ने कहा कि आखिर क्या हुआ, इतने वर्ष बीत गए जिंदगी के, तब तो ऐसा कोई ख्याल तुम्हारे मन में नहीं आया, आज अचानक क्या हुआ? उसने कहा कि आज पहली बार मुझे लगा कि जैसे किसी ने मुझसे ही कहा हो कि जीवन की शाम होने को है, इसके पहले कि मौत का अंधेरा घिरे, क्या कोई रोशनी नहीं करोगे जीवन में, क्या कोई दीप नहीं जला? क्या ऐसा संदेश हम हर शाम अंधेरा घिरने से पहले जलते हुए दीप को देखकर नहीं ले सकते हैं, हम चाहें तो हम ऐसा संदेश रोज ले सकते हैं और इस संदेश को लेकर अपने जीवन को जितना बने उतना संभाल सकते हैं। अपने जीवन को संभालना और अपने आसपास के जीवन को संभालना, यही एक संदेश मनुष्य होने के नाते हमें हमारे पूर्वजों ने, हमें हमारे ऋषि मुनियों ने दिया है। हर आदमी अपने जीवन को संभालने के लिए तो उत्सुक रहता है, सिर्फ मनुष्य है जो अपने जीवन के साथ साथ अपने आसपास के जीवन को भी संभालने के लिए प्रयत्नशील रहता है, उसे प्रयत्न करते रहना चाहिए। लेकिन इस सब के लिए जरूरी है कि एक भीतर की आंख हमारी खुल जाए, रोशनी थोड़ी सी हमारे जीवन में हो। और वो रोशनी कैसे हो, हमें अपने भीतर झांक करके देखना होगा कि उस रोशनी के होने में हमें क्या उपाय करना चाहिए या क्या वजहें हैं जिनकी वजह से कि हमारे जीवन में वो रोशनी गुम हो गई है, हम अपने जीवन को ठीक ठीक प्रकाशित नहीं कर पा रहे। तो मैंने कहीं पढ़ा था कि एक बेटा पैदा हुआ, इस घटना को बुद्ध के साथ भी जोड़ा गया है, अलग अलग ढंग से इस घटना को लोगों ने इंटरप्रेट किया है, जो भी रहा हो, पर घटना एक संदेश तो देती है। तो जब वो बेटा पैदा हुआ तो ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि ये बेटा बहुत पुण्यात्मा है और एक दिन अगर इसकी आंख खुल गई तो ये घर छोड़ देगा। बहुत मुश्किल होती है माता पिता को इस तरह का अगर कोई डिक्लेरेशन हो उसके बेटे को लेकर के, ठीक है पुण्यवान है ये बहुत अच्छी बात है, तो पुण्यवान है तो रहे घर में और घर के लोगों को ऐशो आराम उपलब्ध कराए, तब तो वो पुण्यवान है, और घर ही छोड़ के चला जाए तो उसका पुण्य का क्या मतलब। देखो मजा हमारे साथ, हम दूसरे को उतना ही पसंद करते हैं जितना दूसरा हमारे काम आता है, जितना हमारा दूसरे से स्वार्थ सत्ता है उतना हमें दूसरा अच्छा लगता है। इसके अलावा हमारे भीतर ऐसी कोई रोशनी नहीं है कि हमें प्राणी मात्र के प्रति अपने भीतर इस तरह की भावना उपजे जैसी भावना हमारी अपने आसपास जो हमारे जीवन के लिए मदद देते हैं उनके प्रति उमड़ती है, ऐसी प्राणी मात्र के प्रति भी उमड़े तो शायद हमारे जीवन में रोशनी हो। खैर पिता ने पूछा कि उपाय क्या करना चाहिए, तो ज्योतिषियों ने कहा कि उपाय बहुत आसान है, इसकी आंख ना खुल पाए इस बात का ध्यान रखें। तो पिता ने कहा ऐसा संभव ही नहीं है, क्या हमारे बेटे को आप पुण्यवान कह रहे हो और क्या अंधा बनाना चाह रहे हो, आंख ही ना खुले। नहीं, तो ज्योतिषियों ने कहा कि ये वाली आंख खुलने की बात नहीं कह रहे हैं, ये वाली आंख तो खुलेगी लेकिन भीतर वाली ना खुल पाए, नहीं तो छोड़ देगा घर। तो क्या उपाय करना चाहिए, उपाय यही करो कि इस बेटे का लालन पालन इस तरह से करो कि ये किसी मुरझाते हुए चेहरे को ना देखे, ये किसी मुरझाते हुए फूल को ना देखे, ये बुढ़ापा इसके सामने ना आए, वरना ये विरक्त हो जाएगा, इसकी आंख खुल जाएगी। और दूसरी बात का ध्यान रखना कि कभी इसके जीवन में कोई मृत व्यक्ति दिखाई ना पड़े। और तीसरी बात बहुत सावधानी रखना, इसके बाद भी खुल सकती है। तीसरी बात, इसको जरा भी अपने बाबत, अपने जीवन के बाबत सोचने का मौका मत देना। अगर इसे थोड़ा भी अपने जीवन के बाबत सोचने का खाली टाइम मिल गया तो आंख खुल जाएगी। देखो शायद ये तीनों उपाय आंख बंद रखने के हमने भी किए हैं, आंख लेकिन इसके बावजूद भी जिनकी खुलना है खुल जाती है। कहते हैं उस बेटे को बहुत सावधानी से पाला गया लेकिन एक दिन वो तो राजकुमार था और युवाओं के सम्मेलन में वो अपने रथ में बैठ करके जाता था, तो सारी व्यवस्थाओं के बावजूद भी चौराहे पर एक बिल्कुल जर्जर देह में कोई वृद्ध व्यक्ति गुजरता हुआ उसे दिखाई पड़ ही गया। उसने अपने सारथी से कहा कि ये कौन है, जो पहली बार अपने जीवन में किसी वृद्ध को देखेगा और जर्जर शरीर देखा उसके भीतर प्रश्न तो जरूर से उठेगा, हम लोग तो एडिक्ट हो गए हैं, हम लोग के तो आदत में ये चीज आ गई है कि हम इन सब चीजों को देख करके भी और अपने जीवन में कोई संदेश नहीं ले पाते हैं, जिसको अपन रिजिडनेस कहते ना, कि आदमी जब बहुत रिजिड हो जाता है किसी चीज के बारे में, संवेदन शून्य हो जाता है, वैसी स्थिति से हम भी सब लोग जो है कुछ चीजों के मामले में तो गुजरते हैं। बहुत सारे दिन भर के काम में जरा देखना कि हम लोग कितने रिजिड हो गए हैं कुछ चीजों को लेके, हम उन कितना इग्नोर करते हैं। जिन चीजों को हमें गौर से देखना चाहिए, आंख खोल के देखना चाहिए, उन चीजों को हम शायद ठीक से नहीं देखते हैं। बुढ़ापा सबके जीवन से आता है, सबको उससे गुजरना पड़ता है, लेकिन वो कोई एहसास नहीं दे पाता। जब आ जाता है तब हमें मालूम नहीं था कि आग कितनी गर्म है, वो तो जब हमारे घर आई तब मालूम पड़ा। दूसरे के घर में कितनी भी आग लग गई हो, हमें किसी के जल जाने का एहसास नहीं होता। जब हमारे घर में ही आग आती है तब एहसास होता है कि अरे इसकी जलन तो बहुत ज्यादा तकलीफदायक होती। और जैसे ही सारथी से कहा कि ये कौन है, तो उसने कहा ये तो बूढ़ा व्यक्ति है। दूसरा प्रश्न था राजकुमार का कि सारथी क्या इसी तरह सबको बूढ़ा हो जाना पड़ता है? ऐसा प्रश्न हमारे जीवन में तो शायद किसी बेटे ने उठाया भी होगा तो शायद हमने उसके एक थप्पड़ मार दिया होगा, या हो सकता है कि ये प्रश्न ही उसके जीवन में ना उठने दिया हो। हमारे अपने जीवन में भी हमारे अपने जो पेरेंट्स हैं उनने इस तरह का कोई प्रश्न ही नहीं उठने दिया होगा। लेकिन उस राजकुमार के मन में प्रश्न उठ गया कि क्या इसी तरह वृद्धावस्था सबके जीवन में आएगी? सारथी ने कहा कि सो डेफिनेट, एकदम तय है आएगी, वो तो सबके जीवन में आती है। तीसरा प्रश्न बहुत खतरनाक प्रश्न था। ऐसा प्रश्न करने वाले बहुत विरले लोग होते हैं। राजकुमार ने कहा कि सारथी आखिरी प्रश्न, क्या ऐसा ही बुढ़ापा मुझे भी आएगा? सारथी चुप रह गया कि इतने बड़े राजकुमार के लिए क्या कहूं। उसने सिर नीचा करके सिर्फ इतना ही कहा कि आप और लोगों से अलग नहीं हैं, ये प्रक्रिया आपके साथ भी घटित होगी। तब फिर ठहरो साथी सारथी, अब युवाओं की सभा में मेरी जाने की आवश्यकता नहीं है। और कहते हैं कि रथ मुड़ गया, महल की तरफ वापस लौटने के लिए रथ मुड़ गया कि युवाओं की सभा में जाने वाला मैं अभी से अपनी वृद्धावस्था को देख रहा हूं कि एक दिन तो आ ही जानी है, इसके पहले कि वृद्धावस्था आए मैं अपने इस यौवन का उपयोग कर लूं। और वापस रथ महल की तरफ लौट रहा है। सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ा गईं, क्योंकि आगे आगे की व्यवस्थाएं की गई थी, पीछे पीछे थोड़ी व्यवस्था थी। रथ पीछे मुड़ गया है तो जो अर्थियां पीछे रोक दी गई थी कि राजकुमार के सामने से ना गुजरे, एक अर्थी का सामना हो ही गया जिस पर की व्यक्ति की मृत देह पड़ी हुई थी। प्रश्न सहज था, सारथी ये कौन है? सारथी ने कहा व्यक्ति जो मर जाता है उसे इस तरह ले जाया जाता है। अच्छा, यहां लोग मर भी जाते हैं? उसने कहा हाँ। क्या सभी को मरना पड़ता है? हाँ, सबको मरना पड़ता है। सारथी आखिरी प्रश्न, क्या मुझे भी ऐसे ही मरना पड़ेगा? जब जब भी कोई दूसरा मरता है तो इस बात का एहसास थोड़ी होता है कि हम मर जाएंगे, वो तो कोई दूसरा मरा है। मैं भी मर जाऊंगा एक दिन, मेरी भी देह मेरे से छूट जाएगी, ऐसा एहसास शायद किसी के मरते समय एकाध किसी को होता हो। वो भी मरघट ले जाते समय कोई नया व्यक्ति होगा, एडिक्ट नहीं हुआ होगा, आदत जिसकी नहीं बनी होगी। बचपन में छोटे थे जब तो मरघट नहीं ले जाया जाता था छोटे बच्चों को, क्योंकि आंख खुल गई अगर मरघट में जाकर के तो बहुत खतरा है, इसलिए बहुत सेफ करके रखते थे कि नहीं ले जाना, थोड़ा समझदार हो जाएगा, दो चार दस दफे मरने की परिभाषा सीख लेगा तो फिर उसके बाद उसको आदत हो जाएगी कि लोग तो ऐसे मरते ही रहते हैं। मैं अपने जीवन में खुद इस बात का मैंने अनुभव किया। पहले पेपरों में इक्का दुक्का कभी किसी के मर जाने की खबर सुनते थे तो थोड़ा मन को चोट पहुंचती थी, अब तो हजारों लोगों के मरने की खबर सुबह सुबह पेपर रोज देता है, हम एक नजर डाल करके आगे बढ़ जाते हैं। हमारी संवेदन शून्यता ऐसी है कि हमें एहसास भी नहीं होता कि किसको जीवन में कितनी तकलीफ उठाना पड़ रही है, और मैं उस तकलीफ को दूर करने में अपनी भावनाएं भी व्यक्त नहीं कर पा रहा हूं, ऐसा एहसास शायद कभी नहीं होता। हमें थोड़ा सा इन सब बातों के बारे में सोचना चाहिए। मैं आपको सिर्फ सोचने के लिए कह रहा हूं, हम सब क्योंकि सोच सकते हैं, हम सबको ये क्षमता मिली है कि हम अपने जीवन और अपने आसपास के जीवन के बारे में सोचें, और सोच करके जितना हमसे बने उतना अपने जीवन और आसपास के जीवन को सेफ करें, उसे संभालें। बहुत सीधा सा मैंने समझने की बात तो बहुत सीधी सी है, और फिर इसके बाद तो कितने भी जिंदगी में विचार सुनते रहिएगा, परिवर्तन के लिए तो पुरुषार्थ अनिवार्य है। इतना ही पुरुषार्थ किया अपन ने कि सुन रहे हैं विचार, अच्छे विचार सुनना भी पुरुषार्थ का काम तो है, पर उनको अमल में लाना इसके लिए तो और पुरुषार्थ करना पड़ेगा। करिएगा जितना जिससे बने, हम सबको करना है। वापिस रथ लौट रहा है और मृत देह देख करके मन तो आंख तो खुल गई, रथ वापिस लौट करके पहुंच गया है। अब कोई उपाय काम नहीं आ रहा है। पिता ने सारी व्यवस्था कर रखी थी कि कोई बूढ़ा आदमी सेवा में नहीं रहता था, मुरझाया हुआ फूल तक उस राजकुमार ने नहीं देखा था, मृत देह देखना तो मुश्किल ही था। इस सब के बावजूद भी आज उसका सामना हो गया और उस राजकुमार को कभी खाली नहीं छोड़ा गया था। सुरा और सुंदरी उसके चारों तरफ थी, एम्यूजमेंट के जितने भी इंटरटेन के साधन हो सकते थे वे सब उसके आसपास थे ताकि समय न मिल पाए। हमने भी तो अपने जीवन को इस तरह व्यस्त कर रखा है कि अपने जीवन के बाबत सोचने के लिए हमारे पास 5 मिनट नहीं है। हम इतने व्यस्त हैं अपनी इन सुख सुविधाओं की दौड़ में कि शांत होकर के बैठ करके, और शायद इसीलिए बच्चन को लिखना पड़ा कि जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठ कभी ये सोच सकूं जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला। इतना सोचने के लिए भी इस आपाधापी में हमारे पास वक्त नहीं कि जो किया कहा करा माना उसमें क्या बुरा भला। हम अपने जीवन के बुरे भले के बारे में भी सोच पाने के लिए वक्त नहीं है, लेकिन उस दिन तो आंख खुल गई। अब तो बहुत वक्त था, सारे सुख सुविधा के साधन उस राजकुमार के साथ जैसे थे वैसे ही फैले थे, लेकिन वो तो सिर्फ अपनी छत पर महल की इधर से उधर चक्कर काटता था, सोचता था कि वो क्या सच्चाई है जो मुझे इस बुढ़ापे से, मुझे इस मरण से निकाल सके। कोई ऐसा सत्य है क्या? है वो सत्य, वो हमारे भीतर ही छिपा हुआ है, लेकिन हमारी अपनी अज्ञानता की वजह से हम अपनी आंख खोल करके उस सच्चाई को नहीं देखते हैं। जिन्हें दिख जाती है वे जल्दी से मूंद लेते हैं आंख कि कहीं ऐसा ना हो कि सचमुच मैं इन सब चीजों को छोड़ करके चला जाऊं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि इन सब चीजों को छोड़ करके आप चले जाएंगे तो कोई रास्ता मिल जाएगा, नहीं, इन चीजों का सदुपयोग जो हमें मिली है सिर्फ सदुपयोग करने के लिए मिली है। इनसे कोई रास्ता बीच का निकाल करके और इनका उपयोग करके इनसे बाहर इनसे पार हो जाने के लिए चीजें मिली हुई हैं, और फिर तो वो बहुत स्पष्ट सी है घटना का अंत यही हुआ कि वो राजकुमार विरक्त हो गया और उसने सच्चाई खोजी अपने जीवन में और एक ऐसा सच पा लिया जिसमें कि जन्म मरण और बुढ़ापे की पीड़ा नहीं होती। क्या हम ऐसे सच को पाना चाहेंगे? चाहेंगे तो सब चाहेंगे, मैं किसी से भी पूछूं तो वह भी कह देगा कि हाँ ऐसी चीज तो हम भी पाना चाहेंगे, हम भी दुखी हैं जन्म मरण और बुढ़ापे से दुखी हैं। लेकिन थोड़ा गौर से हम सोचें कि क्या हमने उपाय कौन से कर रखे हैं, क्या हमने जन्म मरण और बुढ़ापे से बचने के उपाय कर रखे हैं या कि हमने फिर से जन्म लेने के और मरण के और बुढ़ापे के उपाय कर रखे हैं। उपाय से मालूम पड़ जाएगा कि किस तरफ जाएंगे, अकेले सोचने से थोड़ी मालूम पड़ता। सोचते तो हम बहुत अच्छा है लेकिन उपाय तो गड़बड़ ही करते हैं, तो जैसा उपाय होगा वैसा ही जीवन में प्राप्त होगा। हम सोचें कि हम जा रहे हैं बाजार में और हमारे कदम जा रहे हों दुकान की तरफ तो पहुंचेंगे कहां, सोचने से थोड़ी पहुंचेंगे बाजार, जहां कदम जा रहे होंगे वहां पहुंचेंगे। अब हमें अपने जीवन में बहुत अंदर झांक करके देखना है कि जो उपाय हम कर रहे हैं वे हमें कहां ले जाएंगे। हमारा सोच जरूर अच्छा हो गया है पर उस सोच के मुताबिक अब हमें कदम भी रखना चाहिए। मैं तो आज इतनी ही बात और आपसे कहूं कि ये जो आध्यात्मिक अंधापन है, ये जो हम अपने ही जीवन के बारे में ठीक ठीक नहीं देख पा रहे हैं, उसको हमें तोड़ना चाहिए और एक रोशनी हमें अपने जीवन में अपने कार्यों में जरूर लानी चाहिए। वो रोशनी का उपाय, बहुत छोटा सा उपाय मैं आपसे कहूं, परस्परता का बोध। हम लोग परस्परता का बोध भूल गए हैं। हम ये भूल गए हैं कि हमारे अपने जीवन के लिए हमें कितने लोगों का सहयोग मिला है। हमारी एक एक सांस के लिए हम जो सांस लेते हैं वे भी वायु का एक जीव हैं, हम जिस पानी का उपयोग करते हैं वे भी जल का एक जीव हैं, जो वनस्पति खाकर हम रहते हैं वे भी वनस्पति का एक जीव हैं, जिस जमीन पर हम चलते हैं वहां भी जीवन है। यहाँ तो हर जगह सांस धड़कती है, मेरी सांस के लेने के लिए मुझे किसी और सांस को छीनना ना पड़े, अगर ये परस्परता का बोध हमारे भीतर आ जाए कि जैसा मैं जीना पसंद करता हूं ऐसी और भी लोगों की सांसें हैं, वे भी जीना पसंद करते हैं, हम एक दूसरे की सांसों को डैमेज ना करें। मेरे ख्याल से तो मनुष्य वही है जो हर धड़कन का ख्याल रखता है, जहां जहां भी चेतना है, जहां जहां भी धड़कन है, वहां तक उसका प्यार पहुंचे, वहां तक वो उसके प्रति अपनी मैत्री अपनी सद्भावना भेज सके। शायद यही हमारे मनुष्य होने की उपयोगिता थी, सार्थकता थी, हम भूल गए हैं। कोई बात नहीं, कोई हमें याद करा रहा है तो हम भूली हुई चीज को याद कर ले, समय रहते याद कर लीजिएगा तो कोई काम आ जाएगा, बाद को याद आएगा तो फिर काम ना आ पाएगी वो चीज। हम लोगों ने ऐसा भी बहुत बार किया है कि हमें चीजें मालूम पड़ जाती हैं पर हम उनका उपयोग बाद को करते हैं, जिनका ठीक समय पर कर लेना चाहिए। मरण के समय तो हर आदमी को अपनी फिक्र लगती है कि अब क्या होगा, मेरी जीवन की यात्रा तो मैंने इतनी गड़बड़ सड़बड़ करी है, आगे की यात्रा के लिए तो मैंने कुछ तैयारी करी नहीं और ये मौत आकर के खड़ी हो गई। वो मौका भी नहीं देती कि अटैची लगा लो, जो जो रखना हो रख लो। हाँ, बहुत लंबी यात्रा है तो रखना हो तो रख लो, इतना मौका भी नहीं देती। वो तो आकर के खड़ी हो जाती कि आपकी अगर तैयारी हो तो चलो, नहीं हो तैयारी तो हम आपको फिर से यहां भेजेंगे। जैसे कि ये स्कूल में अपन बैठे हैं तो स्कूल में तो हर बच्चे को मालूम है कि अगर एक कक्षा में हम फेल हो गए तो उसी में फिर बैठने मिलेगा, आगे वाली कक्षा में नहीं जा सकते। हम संसार की कक्षा में फेल हो जाएंगे तो संसार की कक्षा में फिर से आना पड़ेगा, फिर वही रूटीन। जब तक हम संसार की कक्षा में पास नहीं हो जाएंगे तब तक क्या हम संसार से मुक्त हो पाएंगे? हम एक ऐसा जन्म जो वास्तविक जन्म है, एक ऐसा मरण जिसके बाद मरण नहीं है, क्या हम इसकी तैयारी कर रहे हैं? इसकी तैयारी के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना ही कि हमें परस्परता का सह अस्तित्व का ध्यान हो, को एग्जिस्टेंस। यहां हर आदमी दूसरे पर डिपेंड है, भले ही वो इंडिविजुअल हो लेकिन उसकी वो इंडिविजुअलिटी भी जो है डिपेंड है। हमें बहुत लोगों के सहयोग से अपना जीवन हम जीते हैं पर हम शाम को बैठ के सब प्राणी मात्र के प्रति अपनी मैत्री का कोई संदेश शायद भेजने की तैयारी भी नहीं करते हैं। क्या हम शाम को ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम प्राणी मात्र के प्रति अपनी मैत्री भेजते हैं, जो जहां हैं वो वहां सुख से और आसानी से अपना जीवन जिए। मैं भी अपने जीवन को इस तरह आसान बनाऊं और सबका जीवन भी आसान हो, क्या हम ऐसा विचार नहीं कर सकते? विचार ही तो करना है। और इस विचार के साथ साथ जहां कहीं भी कोई हमें लगता है कि हमारी उसे जरूरत है तो हम वहां जाकर के और उसके काम आ सकें। कोई हमारे काम आए या ना आए, हम दूसरे के काम आ सके या नहीं, ये जरूर हमें सोचना चाहिए। हमें किसी ने क्या दिया ये तो हर एक कोई सोचता है, सोचना ये चाहिए कि जीवन भर हम दूसरे को क्या दे सके। थोड़ा सा एटीट्यूड चेंज करिएगा। अभी तो हम ये हिसाब रखते हैं कि हमें इनसे क्या मिला, बताओ हमें इनसे क्या मिला, हम क्यों मदद करें इनकी? नहीं, अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दें कि हम इनकी क्या मदद कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं क्या, तो हम ऐसी तैयारी अगर अपनी कर लें, मानसिकता ऐसी बना लें। मैं सोचता हूं कि बिना मानसिकता बनाए हम बाहर से कितनी भी रेमेडी करें, कितना भी प्रयत्न करें, हम शायद अपने जीवन को उतना सुंदर नहीं बना पाएंगे जितना हम विचार करते हैं। हमें बहुत भीतर से इस बात को गौर करना होगा, इस बात को समझना होगा। एक बहुत छोटी सी घटना आपको सुनाऊं यशपाल जैन के जीवन की, और मेरे ख्याल से बात इतनी ही पर्याप्त है। अहिंसा में सारे धर्म समाये हुए हैं और अहिंसा की परिभाषा बहुत सीधी सी है, प्रोटेक्शन एंड अफेक्शन इज द नॉन वायलेंस, प्राणी मात्र को सुरक्षा देना और सबके लिए प्यार देना, इससे बड़ा अहिंसा का और कोई संदेश नहीं है। चींटी को नहीं मारा है, ठीक है भैया, हिंसा नहीं करी है, लेकिन दूसरे ने सहयोग किया है तो उसको हमने अपनी तरफ से सहयोग पहुंचाने की भावना कहाँ रखी है? अहिंसा का पॉजिटिव अप्रोच तो यही है, ये तो नेगेटिव अप्रोच है कि हाँ ठीक है हमने हिंसा नहीं करी, लेकिन हिंसा नहीं करी पर जो हिंसा हो रही है उसको दूर करने का कोई उपाय भी तो नहीं करा, यानी समर्थन तो करा हमने, इनडायरेक्ट हुआ है। हम लोग बहुत सारी निष्क्रिय पाप भी करते हैं, सक्रिय पाप तो लोग कर ही रहे हैं लेकिन निष्क्रिय पाप, पाप का समर्थन करना भी निष्क्रिय पाप है। हाँ, ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा अपने को, अपन मनुष्य हैं इसलिए, हम किसी धर्म के हैं इसलिए नहीं, हम मनुष्य हैं, मनुष्यता हमारा धर्म है। हम जैन हैं इसलिए, या कि हम ब्राह्मण हैं इसलिए, या कि हम और भी कोई धर्म को मानने वाले हैं इसलिए हमें ऐसा करना है, नहीं, हम जैन हैं और मनुष्य हैं, हम मनुष्य हैं, हमें मनुष्यता हमारा धर्म है, ये विचार हमारे भीतर आना चाहिए, तो परस्परता का बोध जरूर से होगा। यशपाल जी की एक घटना, हो सकता है कि मैं पहले सुना चुका हूं, मैं खुद भी भूल जाता हूं, आप याद दिला दीजिएगा, अगर बीच में आप याद दिला देंगे तो फिर मैं पूरी नहीं सुनाऊंगा, लेकिन ऐसा अगर मैं कह दूंगा तो आप याद भी नहीं दिलाएंगे, पूरी सुन लेंगे फिर से। मैंने अपनी सेफ्टी तो कर ली कि वो घटना मुझे याद नहीं कि मैंने आपको सुनाई कि नहीं, पर बहुत अच्छी घटना है, संदेश देती है कि देखो हम अपने जीवन को कैसा बनाएं, अपने जीवन को इतना अच्छा बनाएं जिससे कि दूसरा भी हमारी उपस्थिति से खुश हो सके। अभी तो हम एक दूसरे के प्रति इतने अविश्वास से भरे हुए हैं कि कोई बाजू से निकल जाए तो हमको संदेह होता है कि ये हमको कुछ तकलीफ ना पहुंचा दे, पड़ोसी से विश्वास नहीं होने की वजह से ऐसा लगता है कि इससे मुझे कोई तकलीफ ना पहुंच जाए, इतना अविश्वास व्यक्ति व्यक्ति के बीच में कैसे हो गया, हमारी अपनी मानसिकता की वजह से हमने विश्वास तोड़ा अपने हाथ से और अपना प्यार तोड़ा परस्पर एक दूसरे के, नहीं तो काम आते तो कोई जरूरत ही नहीं थी, किसी के यहां पर किसी को कोई तकलीफ है और कोई काम आ गया तो वो कितना निश्चिंत, उसको कोई दिक्कत ही नहीं है, इसी को तो स्वर्ग कहते हैं, और कोई अलग से कोई चीज स्वर्ग होती होगी तो होती होगी, अपने को उससे कोई ज्यादा सरोकार नहीं है, अपन तो अपने घर के आसपास ही स्वर्ग बना सकते हैं कि हम आपके काम आ गए, आप निश्चिंत रहिएगा हम आपके काम आ जाएंगे। मैं जितने आसानी से कह रहा हूं उतना आसान है नहीं, है बहुत कठिन मामला, अभी यहीं से बाहर निकलेंगे तो कठिनाई मालूम पड़ने लगेगी, बाजू वाले की साइकिल के ऊपर अपनी टिकी होगी, हटाओ जी किसकी है ना, यहीं पर वो साइकिल दिख गई मुझे इसलिए मैंने कहा, तो ऐसा हो जाता, उस समय हम ये नहीं सोचते कि ऐसी ही मेरी टिकी होती साइकिल, मैं उसको कैसे उठाता, धीरे से उठा के बाजू में रख देता, अपनी उठा लेता, या कि उससे कहता कि लाइएगा कोई बात नहीं मैं आपकी साइकिल उठा देता हूं। ये बहुत छोटा सा मैंने यही कहीं उदाहरण दे दिया, ऐसे जीवन में बहुत मौके आते हैं, चलो 100 मौके पर चूक गए, एक आध मौके पर तो ऐसा भी करके देखिए, उसका भी मजा लीजिएगा एक आध दिन, उसमें क्या दिक्कत है, अगर 100 मौके पर हम चूक जाते हैं और 100 मौके पर बेईमानी ही कर जाते हैं, दिन भर में एक आध मौका तो ऐसा खोज ले, एक आध तो अच्छा काम कर दें, अभी तक तो रोज हम गाय दिख जाती थी तो एक थप्पड़ लगा देते थे, अब कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि गाय दिख जाए तो एक आध बार प्यार से कि हाँ इसको भी जीना चाहिए, ये भी जीती है यहां मेरे साथ, ये भी जीती है, ऐसा एहसास, ये बहुत आंतरिक चीज है भाई, इसको तो आपको खुद अपने भीतर सबको अपने को डेवलप करना पड़ेगा, उसके बिना ये आएगी नहीं, बाहर से थोपी नहीं जा सकती है कि मैंने आपको कह दिया और आपने शुरू कर दिया, वो ज्यादा दिन नहीं होगा, अपने भीतर से ही ये चीज, जिन लोगों से मुझे आशा नहीं थी कि ये गौशाला के लिए इतनी मेहनत करेंगे, उनको देखता हूं मैं बहुत मेहनत करते हैं, जिनसे हमें आशा नहीं थी, जिनसे आशा थी वे उतना समय नहीं दे पा रहे, उनके और भी बहुत सारे काम है जो उनने खुद अपने हाथ से फैला रखे हैं, कोई ने उनको काम वो सौंपे नहीं है, पर अपने मन से ही, तो ये क्या चीज है, ये मानसिकता का काम है, जो सुबह से भागता भागता चला जा रहा, मैं सोचता नहीं था कि ये व्यक्ति जिनको हम बुद्धू सुद्धू समझते हैं भी काम आ जाते भैया, हाँ जिनको हम पढ़ा लिखा समझदार समझते हैं कि अरे भाई ये तो इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं, वो नहीं आते काम, वो बैठ करके ना, वो बैठ करके ये गुणा भाग करेंगे कि कब खुली, कौन कौन इसमें शामिल है, कितने रुपए आ रहे हैं, क्या हो रहा है, कौन सी मिस्टेक है, ये इसमें अपना सारा दिमाग लगाएंगे, वो एक बार जो है जाकर के वहां और उसकी रेमेडी नहीं करेंगे, ये मजा है। और वो मैं नाम लेने से नहीं चूकूंगा, दो लोगों ने तो, वैसे और बहुत सारे लोग हैं, ऐसा मत सोचिएगा कि मैं किसी का नाम लेके उसको प्रशंसा दे रहा हूं, अतिरिक्त नहीं दे रहा हूं, सुभाष जी ने और एक उनका नाम मुझे आता नहीं, मास्टर जी हैं वो, चौधरी मास्टर साहब, तो वो अपना परिचय सबको अपना, वो जय कुमार जी मास्टर साहब वो उनका नाम, वो मुझे यहां से मैं जब रोज निकलता हूं तो वो फट से दौड़ते हुए आते हैं, महाराज नमोस्तु, अभी गौशाला से आ रहा हूं, पाठशाला जा रहा हूं, फिर भोजनशाला जाऊंगा बाद में, वो तीनों जगह जाते हैं। देखिए अब उनके अपने जीवन में, पाठशाला मतलब उनका स्कूल, वो अपने जीवन में 5 मिनट निकाल रहे हैं, पूरा रजिस्टर मुझे दिया, उस रजिस्टर में मेंटेन करते हैं वो, मैं इतने बजे गया, वहां श्यामलाल मिला, गायें इतनी हैं, गायों की सेवा अच्छी चल रही है, कौन कौन आया था, किसने कितना भूसा डाला, सब सब कुछ लिखा, अच्छा लगा। अब देखिए ये काम भी तो एक काम है और उसमें उनको आनंद आ रहा है, ऐसे बहुत छोटे छोटे काम अपने आसपास होते हैं, ये परस्परता का बोध कराने वाले काम है। कहीं खोजने नहीं जाना, किसी किताब में थोड़ी लिखे कि ये काम है। अरे अपने तुरंत ही वहीं के वहीं जैसा सर्कमस्टेंसेस देखा, वहीं देखा कि मेरी कहां आवश्यकता है और मेरे पास कितना टाइम है जबकि मैं दूसरे को दे सकता हूं। बर्लिन यशपाल जी ने वो अपना उदाहरण लिखा, तो जब मैं सुना चुका वो इलक जी कह रहे हैं कि वो वाला उदाहरण सुना चुके हैं, अब दूसरा वाला तो मैं दूसरा वाला उदाहरण कहां से लाऊं, तो मैं दूसरा वाला उदाहरण अभी ले आता हूं वहीं से जहां से ये वाला आया है। मैं वर्णी जी के जीवन का उदाहरण सुना देता, ये कह रहे हैं कि सुना हुआ है तो फिर नहीं सुनाऊंगा मैं, मुझे याद नहीं था कि मैंने सुनाया कि नहीं। मैं अभी अभी लेटेस्ट परसों नरसों ही एक छोटी सी पत्रिका में वर्णी जी के जीवन की वही परस्परता का बोध, उनके जीवन में करुणा बहुत थी। और वो बराइठा से और सागर जा रहे थे या कर्रापुर से सागर जा रहे थे, उस समय की घटना है। उनके साथ कोई एक ब्रह्मचारी जी भी थे और कहते हैं कि रास्ते में कुएं पर उन्होंने पानी वगैरह पिया। पानी पिया तो उसी समय एक अम्मा अपने छोटे से बेटे को लेकर के 3-4 बरस का रहा होगा, वहां भी पानी पीने के लिए आई। तो अब वर्णी जी के मन अंदर दया भाव तो था ही, अब उन्होंने देखा कि अपन तो किसमिस काजू खा रहे हैं और वो छोटा सा अकेला निन्ने पानी पी रहा है, बिना कुछ खाए पानी पी रहा है, तो 4 किसमिस इसको भी दे दे, तू भी खा ले। वो छोटा सा लड़का, ऐसा बहुत कठिन है ऐसा होना, अपन तो दूर देख करके उस तरफ मुंह कर लेंगे अगर अब खाना वाना कुछ हो गया, और अपना मित्र वित्र आ रहा होगा तो जल्दी से काफी करके उसको पार्ट करना पड़ेगा, ऐसा कर लेते हैं कई बार, इससे मानसिकता मालूम पड़ती। और उन्होंने वो उसको भी दे दी, तो उसकी मां ने देखा कि ये कौन दयालु व्यक्ति है, अपनी किसमिस में से इसको, इसने तो किसमिस देखी तक नहीं, खाना तो बात अलग, जिंदगी में इसको किसमिस दे दी, जरूर से कोई दयालु व्यक्ति है। और दयालु व्यक्ति की सहानुभूति से व्यक्ति का मन विगलित हुए बिना रहता नहीं, और वो मां विगलित हो गई और उसने अपना दुख उनके सामने कह दिया। और दयालु व्यक्ति दूसरे को सबको दुखी तो जानता है पर दुख सुनकर के और दया से अभिभूत ना हो, ऐसा होता कहां है। वर्णी जी बहुत दया से अभिभूत हो गए, क्या किया उन्होंने, उसी क्षण अपने जितने पैसे थे रुपए थे वो सब, और अपने पास एक धोती और दुपट्टा था वो भी, उसके मना करते करते भी, और उसे वो धोती दुपट्टा और जितने पैसे से सब दे दिए। अब क्या रह गया, अकेला जो है लंगोट रह गया। अब वो जो ब्रह्मचारी जी थे कहने लगे कि काय सागर तक चल रहे हैं और तुमने जो इनको दे दो, अब कैसे चलोगे वहां शहर में, अच्छा लगेगा। कहले सुनो रास्ता में कर ले अपन सामाए और अंधेरा हो जाएगा सो चलेंगे। उपाय भी दया करने वाला अपने जीवन में खोज लेता है, उसे उसे बाद में इस चीज की फीलिंग नहीं होती कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, तुरंत जवाब दे दिया कि कोई बात नहीं, बीच में कहीं सामायिक कर लेंगे संजा को, और थोड़ी रात घिराएगी तो घर पहुंच जाएंगे, वहां कौन देखने वाला है, और धीरे से घर पहुंच करके अपने कपड़े और अपने पास तो बहुत हैं, इसके तो ये काम आ जाएंगे, और इससे कहां कहें कि हमारे घर तक चलो फिर हम देंगे। ये टालने वाली मानसिकता भी अपन लोग सीख गए, किसी को नहीं देना हो तो अपन टालते हैं, अब है ही नहीं हमारे, ये कहूं। और ऐसा जो कहता है सो वो कह ढीला नहीं बसता, ये भी ध्यान रखना। सुदामा के चावल का मामला क्या था, यही था, झूठ मूठ मित्र थे श्री कृष्ण के, और झूठ मूठ कह दिया था जब श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या खा रहे हो, चुपके चुपके कुछ नहीं ऐसा कह दिया था, उसकी तकलीफ कितनी पाई थी सुदामा ने बाद में जाकर के, और वही चावल जो है अगर उधर दे देते श्री कृष्ण को, असल में किसी दूसरे को दिया हुआ ही हमारा होता है, किसी दूसरे का छीना हुआ हमारा कभी नहीं हो पाता, ये मानसिकता हमारे मन में आ नहीं पा रही। जितना हम देते हैं उतने समृद्ध होते चले जाते हैं, आप इसको किसी तर्क देकर के काटना चाहें तो काट दें, ये तो अनुभव की बात है। तर्क तो आपके पास हो सकते हैं कि अरे वाह ये कौन सा गणित है कि देव सो बढ़त चलो जात, हमारी तो जिंदगी ने कर गई कबो नहीं बढ़ो, कौन सी भावना से दिया है, सवाल ये है, यहां भावनाओं की बात है। तो वो दे दिया, और शाम को जब पहुंचे तो बाई जी मंदिर जा रही थी, उनने देख लिया, जी भले ही बहुत छुप करके निकले पर
देख लिया सो ये हालत क्या बना रखी है, दिसंबर का महीना है इतनी ठंड में और ऐसे चले आ रहे। वो तो कुछ नहीं बोले, वर्णी जी से तो कुछ बोलते नहीं बना। ब्रह्मचारी जी ने कहा कि भाई ऐसी ऐसी घटना हुई, तो भाई भी विगलित हो गई। अच्छा किया, इसका तो स्वभाव ही ऐसा है, ठीक है, इसने जो किया सो अच्छा किया और जितना था सो दे दिया। वर्णी जी ने सुन लिया कि भाई जी ने कहा कि जितना था सो दे दिया, तो क्या बोले वर्णी जी, वो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, भाई जी यहाँ हमारा है क्या जो हम किसी को दे दें, पर पदार्थ को पहले अपना मानते हैं और फिर पर पदार्थ को दूसरे को देकर अहंकार से अपना संसार बढ़ाते हैं। भाई जी हमारा यहाँ कुछ नहीं है, सब सबका है, आप ऐसी हमारी प्रशंसा न करो कि हमने किसी को अपना कुछ दे दिया, हमारा कुछ नहीं है, जो जिसका था देना पावना सो वो उसी का था, मेरा उसमें कुछ नहीं। ये क्या मानसिकता है, ये ऐसी छोटी छोटी घटनाएं भी हमारे जीवन को बहुत बड़ी, मैं तो जब पढ़ता हूं तो उसी क्षण मन में आता है कि देखो ऐसे लोग भी हुए हैं, ऐसी मानसिकता के लोग जिनको परस्परता का बोध था, और ऐसे लोग ही महापुरुष कहलाते हैं, अपने जीवन का कल्याण करते हैं, हमें संदेश दे के चले जाते हैं, हमें ऐसे अच्छे संदेश ग्रहण करके और अपनी मानसिकता बदल करके अपने जीवन को अच्छा बनाना, अपने आसपास के वातावरण को सुखद बनाना, यही दृष्टिकोण रखें हम। इसी भावना के साथ मेरे साथ नमोकार करें, वातावरण पवित्र हो, नमो अरिहंता। ओम नमो सिद्धा वज्रायाडम नमो लोये सवसावुनम चत्तायरि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम सावु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तायरि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा सावु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो चत्तायरि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पव्वज्जामि। सिद्धे शरणं पव्वज्जामि। साहु शरणं पव्वज्जामि। केवली पन्नतं धम्मं शरणं पव्वज्जामि। धम्मं शरणं पव्वज्जामि।
बोले आचार्य गुरु और विद्यासागर मुनि महाराज की।
मिथ्या तम नाश वेखो, ज्ञान के प्रकाश वेखो, आपा पर भास वेखो, भानु सेवा खानी है। सहु द्रव्य जान वेखो, बंद वेद भान वेखो, स्वपर पिछान वेखो, परम प्रमाणी है। अनुभवताय वेखो, जीवों के जताय वेखो, काबू न सताय वेखो, भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेखो, पार के उतार वेखो, सुख विस्तार वेखो, ये ही जिन वाणी है। हे जिन वाणी सरस्वती, और तो ये जपो दिन रैन, जो तेरा शरणाग के सो पावे सुख के जावा।